एकत्र ज्ञानोगोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोगोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
हाँ बिल्कुल, किताब है मलीज रूथवेन की, इस्लाम, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
और ये विषय आज वाकई बहुत अहम है, है ना? इस्लाम के बारे में खबरें तो बहुत आती हैं टीवी पर, अखबारों में
रोज ही आती हैं।
हाँ, लेकिन वो ऊपरी जानकारी होती है अक्सर। उससे आगे बात है एक गहरी, एक संतुलित समझ बनाना, खासकर आज की इस कनेक्टेड दुनिया में मुझे लगता है बेहद जरूरी हो गया है।
सही कहा। कई बार क्या होता है कि धारणाएं बस खबरों से बन जाती हैं, और ये किताब जैसा आपने कहा मदद करती है कि हम इस्लाम को सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के चश्मे से ना देखें।
हाँ, बल्कि एक पुनी सभ्यता के रूप में, एक सामाजिक और कानूनी व्यवस्था के रूप में भी समझें।
बिल्कुल, तो चलिए इस किताब के पन्ने पलटते हैं जरा और देखते हैं कि रूथवेन हमें क्या सिखाते हैं।
जरूर, शुरुआत लेखक से करते हैं, मलीज रूथवेन।
हाँ बताइए, इनके बारे में कौन है ये?
ये एक जाने माने आयरिश स्कॉटिश लेखक हैं, अकादमिक भी हैं और पत्रकार भी रहे हैं।
अच्छा,
इनकी खासियत इस्लाम, मध्य पूर्व और जो धार्मिक आंदोलन है उनके अध्ययन में है। कैम्ब्रिज से पढ़े हैं और काफी समय इन्होंने मध्य पूर्व में काम करते हुए बिताया है।
और जो बात शायद इनके नजरिए को दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये कोई मतलब धर्मशास्त्री नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बैकग्राउंड राजनीति विज्ञान का है, इतिहास का है और तुलनात्मक धर्म का है। उन्होंने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस और द इकोनॉमिस्ट जैसे बड़े नामों के लिए भी लिखा है, तो वो इस्लाम को सिर्फ आस्था की नज़र से नहीं देखते,
वो उसे एक सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया के तौर पर भी देखते हैं।
एग्जैक्टली। और उनका जो पत्रकारिता का अनुभव है ना, वो उन्हें मुश्किल विचारों को भी बड़ी साफ और सरल भाषा में समझाने में मदद करता है।
अच्छा,
इस किताब में वो एक तरह से क्या कहते हैं, सांस्कृतिक अनुवादक का काम करते हैं। मतलब जो अकादमिक बहसें हैं उनको आम पाठक के लिए आसान बनाते हैं।
तो उनका नजरिया बाहरी है पर वो जानकारी और विश्लेषण पर आधारित है।
हाँ, बाहरी लेकिन सहानुभूतिपूर्ण और विश्लेषणात्मक। बिल्कुल।
तो ये किताब आखिर है किस बारे में? नाम तो कहता है ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, नाम से लगता है कि बस छोटी सी होगी। ये इस्लाम का एक संक्षिप्त परिचय है, लेकिन ये सतही बिल्कुल नहीं है।
अच्छा,
बौद्धिक रूप से काफी ठोस है। ये कोई सीधी साधी ऐतिहासिक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि इस्लाम को एक जीवित व्यवस्था के रूप में पेश करती है।
जीवित व्यवस्था मतलब?
मतलब जिसमें विश्वास, कानून, संस्कृति, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। एक पूरा सिस्टम है।
ओके।
और किताब का मुख्य मकसद ये समझाना है कि इस्लाम के इस्लामिक होने का असल मतलब क्या है, यानी इसका अंदरूनी तर्क क्या है, इसके अधिकार के स्रोत क्या हैं, जैसे कुरान, पैगंबर मोहम्मद, और वो कौन सी बौद्धिक और सामाजिक धाराएं हैं जिन्होंने इसे आज का रूप दिया है। ये उन लोगों के लिए है जो सुनी सुनाई बातों से, स्टीरियोटाइप से आगे बढ़कर इस्लाम की बारीकियों को समझना चाहते हैं।
तो ये किताब एक तरह से इस्लाम की गहराई में उतरती है, इसका एक केंद्रीय विचार क्या है?
हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण विचार ये है कि इस्लाम को सिर्फ आध्यात्मिक विश्वासों के जरिए नहीं समझा जा सकता।
अच्छा।
उसे एक व्यापक सामाजिक कानूनी व्यवस्था के तौर पर देखना जरूरी है, और इस व्यवस्था की धुरी है शरिया।
शरिया, ये शब्द तो बहुत सुना है।
हाँ, सुना होगा, ईश्वरीय कानून। रूथवेन तर्क देते हैं कि इस्लाम की जो परिभाषित विशेषता है वो यही रही है कि कैसे कुरान और पैगंबर के उदाहरण को समाज की बदलती हकीकतों पर लागू करने की एक लगातार कोशिश चलती रही है।
मतलब ये कोई स्थिर चीज नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये गतिशील है और अक्सर इस पर बहस भी हुई है, विवाद भी हुए हैं। ये कोशिश ही इस्लाम की कहानी है एक तरह से।
दिलचस्प। तो किताब हमें कैसे ले जाती है इस सफर पर?
ये हमें एक तरह की थीम आधारित यात्रा पर ले जाती है। शुरुआत होती है पैगंबर मोहम्मद और कुरान से, फिर शरिया की अवधारणा को विस्तार से समझाया जाता है। फिर इस्लाम के अंदर जो विविधता है, जैसे सुन्नी शिया मतभेद या सूफीवाद, उस पर बात होती है।
ओके।
और आखिर में आधुनिक दुनिया के साथ इस्लाम का जो जटिल रिश्ता है उसका विश्लेषण किया जाता है।
ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, अध्यायवार देखते हैं।
हाँ, पहला अध्याय शुरू होता है परिभाषा की समस्या से। रूथवेन कहते हैं कि इस्लाम क्या है, इसका कोई एक सीधा जवाब देना मुश्किल है।
क्यों?
क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है, बहुत विविध है। लेकिन एक चीज है जो इसे जोड़ती है, वो है ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण का विचार। इस्लाम शब्द का मतलब ही यही है, समर्पण।
अच्छा,
समर्पण।
हाँ,
और इसकी सबसे खास बात है इसका सामाजिक और सार्वजनिक पहलू, जो शरिया के ढांचे से जाहिर होता है। ये सिर्फ निजी मोक्ष या सल्वेशन का रास्ता नहीं है,
बल्कि समाज को बनाने और चलाने का एक पूरा खाका है, एक प्रोग्राम है।
बिल्कुल सही। एक ब्लूप्रिंट है समाज के लिए।
फिर एक दूसरा अध्याय आपने कहा पैगंबर और कुरान पर है।
जी, यहाँ इस्लाम की बुनियाद पर बात होती है। पैगंबर मोहम्मद को सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु या प्रॉफिट के तौर पर नहीं देखा गया है।
अच्छा, और किस तरह से?
उन्हें एक राष्ट्र निर्माता, कानून देने वाले और एक समुदाय के नेता के रूप में भी दिखाया गया है। उनके जीवन और उनके कार्य, जिन्हें सुन्नत कहते हैं, वो मुसलमानों के लिए एक मॉडल माने जाते हैं।
और कुरान?
कुरान को ईश्वर का शब्दिक कलाम, मतलब लिटरल वर्ड ऑफ गॉड माना जाता है, जो लगभग 23 सालों में पैगंबर पर नाजिल हुआ या रिवील हुआ। रुथफेन उसकी भाषा, उसकी संरचना और उसकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं, जैसे ईश्वर की एकता, जिसे तौहीद कहते हैं, इन सब पर बात करते हैं। लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता वो ये उठाते हैं कि कुरान कोई रेडीमेड कानूनी किताब नहीं है।
हाँ, ये बात आपने पहले भी कही थी, तो यहीं से व्याख्या की जरूरत पैदा होती है ना?
बिल्कुल, कुरान के जो संदेश हैं, उन्हें समझना और उन्हें जीवन में लागू करना, इसी जरूरत ने इस्लामी कानून, जिसे फिक्ह कहते हैं, और धर्मशास्त्र, जिसे कलाम कहते हैं, उनकी विशाल और जटिल परंपराओं को जन्म दिया।
अच्छा,
और यहीं से अगला अध्याय जुड़ता है,
जो है शरिया, ईश्वरीय कानून पर। इसे रुथवेन विश्वास का मूल कहते हैं, ये क्या है फिर?
ये एक बहुत व्यापक ढांचा है जो जीवन के लगभग हर पहलू को समेटने की कोशिश करता है, मतलब इबादत से लेकर व्यापार तक, परिवार, शादी, न्याय, सब कुछ।
सब कुछ कैसे? इसके स्रोत क्या हैं?
हाँ, इसके मुख्य स्रोत बताए गए हैं। पहला और सबसे अहम तो कुरान है ही, दूसरा है सुन्नत यानी पैगंबर का तरीका, जो हदीस नाम के संग्रहों में दर्ज है।
ओके, हदीस।
तीसरा है इजमा यानी जो इस्लामिक विद्वान हैं उनकी आम राय, और चौथा है क्यास यानी सादृश्य तर्क या एनालॉजी से नतीजे निकालना।
तो ये तो काफी जटिल प्रक्रिया लगती है।
और यहाँ रुथवेन इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि शरिया कोई, मतलब कोई जड़ नियमों की पत्थर की लकीर नहीं है।
अच्छा।
ये हमेशा से इश्तिहाद पर आधारित रही है। इश्तिहाद का मतलब है मानवीय व्याख्या, तर्क वितर्क, कोशिश,
यानी इंसानों ने इसे समझा और लागू किया।
और इसी वजह से अलग अलग समय और जगहों पर इसके अलग अलग रूप विकसित हुए, जैसे कानून के अलग अलग स्कूल बने जिन्हें मजहब कहते हैं। ये इसकी गतिशीलता दिखाता है, इसका लचीलापन।
ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर शरिया को लेकर एक बहुत ही कठोर और स्थिर छवि पेश की जाती है मीडिया में या आम बातचीत में।
बिल्कुल, ये छवि पूरी कहानी नहीं बताती।
ठीक है, तो शरिया के बाद अगला पड़ाव है इस्लाम के भीतर का एक बड़ा विभाजन, महान विभाजन, सुन्नी और शिया। इसकी जड़ें कहाँ हैं?
रुथवेन इसे सीधे तौर पर पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो नेतृत्व का सवाल उठा उससे जोड़ते हैं।
अच्छा, तो ये राजनीतिक था शुरू में?
हाँ, शुरुआत राजनीतिक थी। सुन्नी मानते थे कि नेता समुदाय द्वारा चुना जाना चाहिए, जबकि शियाओं का मानना था कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार का ही दैवीय अधिकार है, खासकर उनके दामाद अली और उनके वंशजों का, जिन्हें वो इमाम मानते हैं।
अहल अल बैत कहते हैं शायद।
हाँ, अहल अल बैत यानी घर वाले। लेकिन ये सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद नहीं रहा, वक्त के साथ
ये धार्मिक मान्यताओं में, कानूनी तरीकों में, यहाँ तक कि पूरी सांस्कृतिक पहचान में बदल गया है ना।
बिल्कुल, शियाओं के लिए इमामों की जो अवधारणा है और कर्बला में इमाम हुसैन की शहादत का जो भावनात्मक महत्व है, वो बहुत गहरा है। उसने उनकी पहचान को, उनकी परंपराओं को बहुत शिद्दत से आकार दिया है।
तो ये हुआ सुन्नी शिया विभाजन। फिर किताब हमें इस्लाम के एक और आयाम से मिलाती है, आंतरिक मार्ग, सूफीवाद। ये क्या है? अगर शरिया बाहरी आचरण पर जोर देता है तो सूफीवाद?
सूफीवाद इस्लाम का रहस्यमय या कह लीजिए आध्यात्मिक पहलू है, मिस्टिकल डायमेंशन।
अच्छा,
मिस्टिकल।
हाँ,
ये बाहरी नियमों से ज्यादा दिल की सफाई पर, ईश्वर के साथ सीधे व्यक्तिगत अनुभव और प्रेम पर जोर देता है।
तो ये शरिया से अलग है?
अलग भी है और पूरक भी। सूफीवाद में तरीका यानी आध्यात्मिक मार्ग और फना यानी स्वयं को ईश्वर में विलीन कर देने का लक्ष्य, ये सब अवधारणाएं बहुत अहम है।
और सूफी गुरु जिन्हें पीर या मुर्शिद कहते हैं,
हाँ,
उनकी और उनके सिलसिलों की यानी जो परंपराएं हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है इस्लाम को दूर दराज के इलाकों तक फैलाने में। भारत में भी चिश्तिया, नक्शबंदिया जैसे कई सिलसिले बहुत प्रभावशाली रहे।
तो क्या जो रूढ़िवादी विद्वान थे, उलेमा और सूफियों में हमेशा तनाव रहा, क्योंकि एक बाहरी नियम पर जोर दे रहा है दूसरा अंदरूनी अनुभव पर?
हाँ, कभी कभी तनाव बिल्कुल रहा है, खासकर जब सूफी शिक्षाएं कुरान या शरिया की शाब्दिक व्याख्या से अलग जाती थी। लेकिन ये भी सच है कि अल गजाली जैसे महान विचारक हुए जिन्होंने सूफी आध्यात्मिकता और रूढ़िवादी इस्लाम के बीच एक पुल बनाने का काम किया।
अच्छा।
उन्होंने दिखाया कि कैसे दोनों साथ चल सकते हैं। इससे सूफीवाद मुख्य धारा का हिस्सा बन सका। तो ये बाहरी और आंतरिक के बीच एक तरह का संतुलन भी दिखाता है इस्लाम में।
दिलचस्प। तो हमने पैगंबर, कुरान, शरिया, सुन्नी शिया विभाजन और सूफीवाद देखा। अब किताब हमें आधुनिक दौर में ले आती है।
हाँ, आधुनिक दुनिया में इस्लाम। ये हिस्सा पश्चिमी उपनिवेशवाद और आधुनिकता ने जो चुनौतियां पेश की उन पर बात करता है। रूथवेन का तर्क है कि इसने मुस्लिम समाजों के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया, अस्तित्व का संकट।
इतना गहरा संकट?
इसकी प्रतिक्रियाएं क्या रही फिर? रूथवेन इन प्रतिक्रियाएं हैं या रास्ते बताते हैं जो उभरे। एक, धर्मनिरपेक्षता, यानी पश्चिमी मॉडल अपनाना, धर्म और राज्य को अलग करना, जैसा कमाल अतातुर्क ने तुर्की में किया। दूसरा, आधुनिकतावादी सुधार। इसमें मोहम्मद अब्दू जैसे विचारक थे जिन्होंने कहा कि इस्लाम और आधुनिकता में तालमेल बिठाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने इज्तिहाद यानी स्रोतों की नई व्याख्या पर जोर दिया।
और तीसरा रास्ता?
तीसरा, जिसे इस्लामवाद या फंडामेंटलिज्म भी कहते हैं। इसमें हसन अल-बन्ना, सैयद कुतुब जैसे विचारक आए जिन्होंने पश्चिमी मॉडल को पूरी तरह खारिज कर दिया और शुद्ध इस्लाम और शरिया पर आधारित राज्य की वापसी का आह्वान किया।
यहीं पर रूथवेन वो महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो आपने पहले बताई थी कि आज का जो राजनीतिक इस्लाम या इस्लामवाद है,
हाँ,
कि वो कोई मध्ययुगीन सोच का नतीजा नहीं है बल्कि ये आधुनिकता के साथ टकराव से पैदा हुई एक पूरी तरह से आधुनिक विचारधारा है।
ये बहुत अहम नुक्ता है। बिल्कुल, ये परंपरा के प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल तो करती है लेकिन इसके लक्ष्य, इसके तरीके, इसकी चिंताएं, वो सब आधुनिक दुनिया से जुड़ी हुई हैं।
और इसी संदर्भ में किताब में महिलाओं की स्थिति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होती है।
हाँ, उसमें दिखाया गया है कि कैसे कुरान की शिक्षाओं, अलग अलग कानूनी व्याख्याओं और विभिन्न संस्कृतियों के रिवाजों के बीच हमेशा एक जटिल रिश्ता रहा है। कोई एक सीधी तस्वीर नहीं है।
सही है। तो इस पूरी किताब से, इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें या संदेश क्या निकल कर आते हैं अगर हमें समेटना हो तो?
हाँ बिल्कुल। पहला और शायद सबसे अहम, जैसा हमने बार बार देखा, शरिया यानी ईश्वरीय कानून की केंद्रीयता। पारंपरिक इस्लाम में ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है बल्कि समाज और जीवन को दिशा देने वाला मुख्य ढांचा है। एक तरह की नोमोक्रेसी है, कानून का शासन।
दूसरी बात,
एक आदर्श एकीकृत समुदाय, उम्मा का सपना और विभाजन की हकीकत। कुरान में एकता पर बहुत जोर है पर इतिहास में राजनीतिक बंटवारे और सांप्रदायिक मतभेद, खासकर सुन्नी शिया, हमेशा मौजूद रहे हैं। ये तनाव लगातार बना रहा है और कई आंदोलनों को हवा दी है।
तीसरा,
रहस्योद्घाटन यानी रेवेलेशन और व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन के बीच का निरंतर संवाद। कुरान को ईश्वर का अंतिम शब्द माना जाता है पर उसका अर्थ समझने और उसे लागू करने के लिए मानवीय व्याख्या यानी इज्तिहाद हमेशा जरूरी रही है। इसी प्रक्रिया ने इस्लामी सोच को, कानून को, धर्मशास्त्र को गतिशील बनाए रखा है।
चौथा क्या होगा?
चौथा, बाहरी लीगल और आंतरिक आध्यात्मिक इसोटेरिक आयामों का सह अस्तित्व, यानी शरिया का पालन और सूफीवाद की खोज। ये अलग रास्ते हैं पर अक्सर एक दूसरे के पूरक रहे हैं, जैसा अल गजाली ने दिखाया। इस्लाम सिर्फ कानून नहीं है और सिर्फ आध्यात्मिकता भी नहीं है, दोनों साथ चलते हैं।
और पांचवा, जो आज के समय के लिए बहुत जरूरी है।
हाँ, पांचवा, आधुनिकता के साथ टकराव, एक निर्णायक मोड़ के रूप में। पश्चिमी औपनिवेशिक और सांस्कृतिक प्रभाव ने इस्लामी दुनिया के सामने इतिहास की शायद सबसे बड़ी चुनौती पेश की और आज के इस्लाम के जो अलग अलग रूप हम देखते हैं, चाहे वो सुधारवादी हों, रूढ़िवादी हों, इस्लामवादी हों या धर्मनिरपेक्ष हों, वो सब इसी टकराव के देन हैं।
और इसी से जुड़ी एक और बात जो मुझे अहम लगी वो है इस्लाम की अंदरूनी विविधता। उसे एक ही रंग में देखना वाकई गलत है।
बिल्कुल, भौगोलिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, हर स्तर पर बहुत विविधता है।
किताब में कई विचार ऐसे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या कुछ मुख्य विचारों को हम दोबारा दोहरा सकते हैं?
हाँ, क्यों नहीं। एक तो ये कि इस्लाम सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं बल्कि समाज के लिए एक ईश्वरीय खाका है और शरिया उसकी रूपरेखा या आर्किटेक्चरल प्लान है।
ये समझाता है कि क्यों इस्लाम में धर्म, कानून और समाज अक्सर इतने जुड़े हुए दिखते हैं।
बिल्कुल। दूसरा, सुन्नी शिया विभाजन शुरू तो राजनीतिक नेतृत्व के सवाल पर हुआ पर यह धीरे धीरे धर्मशास्त्र और संस्कृति में इतना गहरा उतर गया कि ईश्वर और इतिहास को समझने के दो अलग नजरिए बन गए।
ये दिखाता है कि कैसे शुरुआती मतभेद वक्त के साथ स्थायी पहचान बन जाते हैं।
हाँ, तीसरा, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा था, आधुनिक इस्लामाबाद अतीत की कोई नकल नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से आधुनिक विचारधारा है जो आज की राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का जवाब देने के लिए परंपरा की भाषा और प्रतीकों का इस्तेमाल करती है।
ये वाकई कट्टरपंथी को सिर्फ पुरानी या मध्ययुगीन सोच मानने की आम धारणा को चुनौती देता है।
सही। और चौथा, शरिया कोई पत्थर की लकीर या स्थिर संहिता नहीं, बल्कि न्यायशास्त्र की एक गतिशील प्रणाली है जिसने व्याख्या इज्तिहाद के जरिए खुद को अलग अलग समय और हालात के मुताबिक ढाला है।
ये शरिया की जटिलता और उसके लचीलेपन दोनों को उजागर करता है। बहुत जरूरी बात है ये।
तो अब सवाल उठता है कि इस सारी जानकारी का, इस समझ का हमारे लिए क्या मतलब है?
बिल्कुल,
है ना, हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमें दुनिया में जो कुछ हो रहा है, खासकर मुस्लिम समाजों से जुड़ी खबरें या घटनाएं, उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। हम सिर्फ हेडलाइन से आगे जाकर सोच पाते हैं।
बिल्कुल।
और भारत जैसे विविधता भरे देश में रहते हुए, या जब हम दुनिया भर में लोगों से मिलते जुलते हैं, तो ये समझ हमें अपने मुस्लिम दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ ज्यादा सम्मान और समझदारी से पेश आने में मदद करती है।
हाँ, क्योंकि हम ये जान पाते हैं कि मुस्लिम होना कोई एक ढर्रे की बात नहीं है, इसमें बहुत विविधता है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग जीने के तरीके हैं।
और ये मीडिया में अक्सर इस्लाम के बारे में जो सनसनीखेज या बहुत सरलीकृत तस्वीर पेश की जाती है, उसे परखने में भी मदद करती है, है ना? बिल्कुल। जब हम शरिया या जिहाद जैसे शब्द सुनते हैं, तो हम उन्हें सीधे किसी चरमपंथी या नेगेटिव चीज से जोड़ने के बजाय ये समझ पाते हैं कि ये जटिल ऐतिहासिक और कानूनी अवधारणाएं हैं जिनकी कई अलग अलग व्याख्याएं रही हैं और हैं।
सही कहा, यह हमें स्टीरियोटाइप से बचाता है। और अगर हम अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद की बात करें, तो इस तरह की एक सूचित समझ, एक इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग एक बहुत अच्छा आधार बनती है।
हाँ, क्योंकि तब हम किसी चीज को उसकी संरचना और उसके इतिहास के साथ समझने की कोशिश करते हैं, फिर बहस या बचाव की मुद्रा से हटकर शायद एक सार्थक बातचीत मुमकिन हो पाती है।
मेरे लिए इस किताब को पढ़कर या इस चर्चा के बाद सबसे चौंकाने वाली बात शायद यही थी कि इस्लाम के भीतर कितनी ज्यादा विविधता है, भौगोलिक, सांप्रदायिक, वैचारिक, कानूनी। हम अक्सर इस्लाम कहकर एक रूपता मान लेते हैं जो हकीकत से बहुत दूर है। ये जानना अहम था।
और मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये रही कि इस्लाम कोई अतीत में जमी हुई चीज नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ईश्वर के दिए गए मार्गदर्शन यानी कुरान और इंसानी समझ और बदलते हालात के बीच पिछले 1400 सालों से एक लगातार संवाद जारी है। शरिया इसकी मुख्य भाषा रही है और आधुनिकता के साथ इसका जो सामना हुआ है वो आज भी इसकी दिशा तय कर रहा है। ये एक जीवित सांस लेती हुई परंपरा है।
बहुत खूब कहा। एक सवाल जो शायद हमारे श्रोताओं के मन में हम छोड़ सकते हैं वो ये है कि परंपरा और आधुनिकता के बीच जो लगातार खींचतान, ये संवाद चल रहा है, ये भविष्य में इस्लाम के रास्ते को और दुनिया में उसकी जगह को कैसे आकार देगा, ये सोचने वाली बात है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।